सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बजट के बाद एक वेबिनार को संबोधित किया। इसका विषय था आर्थिक विकास को सतत और सुदृढ़ बनाना। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आर्थिक विश्लेषक और फिक्की के पूर्व महासचिव दिलीप चनॉय। दिलीप चनॉय जी, आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
धन्यवाद श्रेया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बजट के बाद आयोजित होने वाले एक और वेबिनार को संबोधित किया। इस वेबिनार में औद्योगिक विस्तार, तकनीकी नेतृत्व और दूरदर्शी सुधारों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ विश्व के लिए आशा की किरण बना हुआ है।
आज जब भारत अपनी मजबूत इकोनॉमी से पूरे विश्व की उम्मीद बना हुआ है, आज जब ग्लोबल सप्लाई चेन रीशेप हो रही है, तब अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति विकसित भारत का भी बहुत बड़ा आधार है।
चनॉय जी, आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसे आज मजबूत है और हम पूरी दुनिया के लिए उम्मीद किस तरीके से बने हुए हैं।
श्रेया, जो प्रधानमंत्री ने जो आज अपने पोस्ट बजट वेबिनार में कहा था, तो इसके तीन कारण है। अगर आप देखें तो भारत एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अगर आप देखें तो पिछले क्वार्टर में ही 7% से ज्यादा ग्रोथ हुई थी। बड़े जो एनालिस्ट हैं, IMF है, उन्होंने भी ये कहा है कि ये पूरे साल में भारत की जो ग्रोथ होगी वो 7% से ऊपर होगी, और अगले साल के लिए भी उन्होंने 6.5-6.4% की ग्रोथ एक रखी। तो एक तो जो ग्रोथ की रफ्तार है उसका एक ये पहलू है। दूसरा अगर देखें तो काफी स्टेबिलिटी है। अगर आप देखें तो कई देशों में अनस्टेबिलिटी है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, भारत में इस टाइम काफी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और एक प्रिडिक्टेबिलिटी है। तीसरा जो है, लगातार पिछले कई सालों से, और आज वेबिनार में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई उसके उदाहरण दिए थे कि बड़े पैमाने पे रिफॉर्म्स हो रहे हैं और यहाँ पे इंडस्ट्री को और इकोनॉमी को कैसे एक तरीके से सपोर्ट करें, कैसे उसकी ग्रोथ एनहांस करें, उसके और एक काफी एक बड़ी प्रयास है। और एक शब्द यूज किया जा रहा है कि हमें रिफॉर्म एक्सप्रेस को हमने बोर्ड कर लिया है। तो ये तीन मेन कारण है जिससे पूरी विश्व या भारत को एक नए नजरिए से एक ग्रोथ स्टेबल सेंटर और प्रिडिक्टेबल इकोनॉमी दिख रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बिल्ड मोर, प्रोड्यूस मोर, कनेक्ट मोर के संकल्प को पूरा करने के बाद अब एक्सपोर्ट मोर को भारत की अगली बड़ी प्राथमिकता बताया। आइए पहले प्रधानमंत्री को सुनते हैं।
हमारा संकल्प स्पष्ट है, बिल्ड मोर, प्रोड्यूस मोर, कनेक्ट मोर, और अब जरूरत है एक्सपोर्ट मोर। और निश्चित तौर पर इसमें आज आपके बीच जो मंथन होगा, इस मंथन से जो सुझाव निकलेंगे उनकी बड़ी भूमिका होगी।
तो जैसा कि प्रधानमंत्री ने एक्सपोर्ट मोर की भी अब बात कही है, तो चनॉय जी, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं?
पिछले कई साल से और पिछले कई महीनों में ये जो भारत में जो इकोनॉमिक और ये जो ट्रेड का जो वातावरण है वो काफी बदला है। प्रधानमंत्री ने भी इसके ऊपर अपने भाषण में जिक्र किया था कि हमने EU के साथ FTA किया, EFTA का भी एक FTA है, हमने UAE से पहले FTA किया था, ऑस्ट्रेलिया से, UK से। तो ये जो अवसर मिले हैं भारत के इंडस्ट्री के लिए और मार्केट्स में जाने के लिए, तो ये एक एक्सपोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरीके से एक स्ट्रैटेजी होती है। तो इसलिए अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री ने जो अपने भाषण में कहा था, उन्होंने कहा था कि आप यहाँ पे इंडिया के लिए तो बना रहे हैं, यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप एक्सपोर्ट पे ध्यान दीजिएगा और उसके लिए आपको अपनी इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी चाहिए, प्रोडक्टिविटी को एक तरीके से अच्छा करना चाहिए, और आपको जो इंटरनेशनल वैल्यू चेन्स में इंटीग्रेट करना है और भारत को एक तरीके से इंटरनेशनल एक सप्लाई सेंटर बनाना चाहिए। उन्होंने क्वालिटी पे भी काफी एक तरीके से जोर दिया था। उन्होंने कहा था क्वालिटी 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 पे ध्यान दीजिएगा और R&D पे भी एक तरीके से उसके ऊपर फोकस करना। उनके शब्द तो बड़े अच्छे थे, उन्होंने कहा था इंडस्ट्री तो मेरे ख्याल आप लोग R&D पे कंजूसी करते हैं, तो आपको R&D ज्यादा करना चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री का ये आग्रह था कि आप जो गवर्नमेंट है वो आपके लिए एक अच्छा वातावरण बना रही है और अच्छे अवसर दे रहे हैं, और ना केवल लार्ज इंडस्ट्री बट मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्री भी इसका फायदा उठाए और एक ग्लोबल प्लेयर बने।
जैसा कि आपने अभी मुक्त व्यापार समझौते की बात की, तो उसी से जुड़ा मेरा एक प्रश्न है आपसे कि भारत ने हाल ही में कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिसमें यूरोप और अमेरिका भी शामिल हैं। इससे कैसे हमारी अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलने वाली है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा विस्तार से बताइए।
तो अगर आप देखें, तो अगर आप एक उदाहरण लें EU का या आप UK का उदाहरण दें, तो दो मैं आपको उदाहरण देता हूं कि इसमें क्या होता है कि जो हमारे इंडस्ट्री थे, अगर वो FTA से पहले वहां पे कोई एक्सपोर्ट करना चाहते थे तो उनकी काफी भारी संख्या में ड्यूटीज उनके अगेंस्ट थे। अब कई FTAs में कई सेक्टर्स जो हैं, और ये जो इंडस्ट्री के दोनों साइड्स पे है, एक तो बड़े जो हमारे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं जैसे टेक्सटाइल्स हुआ, लेदर हुआ, फूड प्रोसेसिंग हुआ, इसमें जो हमारे कॉम्पिटिटर्स जो उन मार्केट्स में जाते हैं उनसे हमारी ड्यूटी ऊंची थी। अब FTA के द्वारा हमारी जो एक्सपोर्ट वहां पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उनसे कम हो गई है, तो इंडियन प्रोडक्ट्स एक तरीके से कॉम्पिटिटिव हो गए, और वो जो मार्केट एक्सेस मिलता है, चाहे वो UK हो, चाहे वो EU हो, या और भी हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री विजिट कर रहे थे भारत, तो उसमें भी एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक अग्रीमेंट की बात हो रही थी। और ऐसे में जो यहाँ से इंडिया में जो प्रोड्यूस करते हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए एक अच्छा सा अवसर मिलता है, और EU जैसे क्षेत्र में जहाँ पे स्टैंडर्ड्स में है वहाँ पे स्टैंडर्ड्स का कोऑपरेशन भी हो रहा है, और एक तरीके से काफी मार्केट एक्सेस, तो एक तो मार्केट एक्सेस, प्रोडक्ट क्वालिटी, और तीसरा जो है इंडिया की अगर FTA में EU के साथ FTA होगा तो EU के जो मेजर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी सोचेंगे कि हम इंडिया में प्लांट लगाए, इंडिया में मैन्युफैक्चर करें और EU और अदर नेशंस को एक तरीके से एक्सपोर्ट करें, तो काफी फायदा होता है उद्योगों को और इंडस्ट्रीज को FTAs के द्वारा। और सरकार जो है जो सेंसिटिव सेक्टर्स है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या मिल्क प्रोडक्ट्स हो या पोल्ट्री हो या ऐसे कोई और थोड़े से जो सेक्टर्स हैं, उनको इन सब FTAs में प्रोटेक्ट करके चल रही है कि हमारे जो फार्मर्स और इन क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर कोई एडवर्स इम्पैक्ट ना आए।
चिनॉय जी, विनिर्माण के क्षेत्र में भारत अपनी प्रमुख औद्योगिक क्षमताओं को मजबूत कर रहा है। इसके लिए डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स पर भी फोकस किया गया है। तो ऐसा करने से हम भारत के औद्योगिक ढांचे को कैसे मजबूत बना सकते हैं, इस पर आपकी क्या राय है?
जैसे ने प्रधानमंत्री ने कहा और आपने उनके जो शब्द थे थोड़े कोट किए थे, तो एक जो भारत में जो उद्योग जगत की एक काफी एक तरीके से चैलेंज हुआ करता था कि हमारे जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो करीब 12 से 14% के बीच में एक तरीके से है, और ये दुनिया से काफी हाई है। दूसरा, जो कोविड के द्वारा और अभी पिछले कई महीनों में एक तरीके से जब एक्सपोर्ट्स में कोई रुकावट आ जाती है या एक्सपोर्ट्स में सर्ज हो जाता है, तो भारत के एक्सपोर्टर्स को कंटेनर मिलने के लिए एक बड़ी चैलेंज हो जाता है, और वो कंटेनर्स कहीं और फंस जाते हैं तो भारत में जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको माल एक्सपोर्ट करने में दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए जो प्रधानमंत्री ने कहा था, एक जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईवेज, रोड्स, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वो है, उसको लॉजिस्टिक्स कॉस्ट से डबल डिजिट से सिंगल डिजिट तक लिए आए हैं, तो उससे एक तरीके से भारत में जो उद्योग है उनको एक कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। अगर आप दूसरा देखें तो कंटेनर शॉर्टेज के लिए ये हाल ही बजट में वित्त मंत्री ने एक अनाउंसमेंट किया था कि एक कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे, और उससे अगर भारत कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग ना केवल आत्मनिर्भर हो जाता है लेकिन विश्व को भी सप्लाई करता है, तो भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको कंटेनर्स भी मिलेंगे और कोई कंटेनर शॉर्टेज के रीजन से कोई एक्सपोर्ट्स में कोई रुकावट नहीं आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है, और प्रधानमंत्री का ये कहना था कि हमने ये जो अनाउंसमेंट्स किए हैं उसमें आप सुझाव दीजिए इनको कैसे इम्प्लीमेंट करें, आपका कैसा फायदा होगा। तो ये जो एक बड़ा पार्टिसिपेटिव सा था, क्योंकि प्रधानमंत्री के एड्रेस के बाद तो सारे जो देश भर में चर्चा होगी और उस चर्चा को एक तरीके से कंडेंस करके वापस एक प्रोसेस में डालेंगे और सजेशंस लेंगे।
इस बार के बजट में बायोफार्मा शक्ति मिशन की घोषणा भी की गई है, इससे भारत के बायोफार्मा क्षेत्र को कैसे लाभ होगा इस पर प्रधानमंत्री ने भी आज अपने संबोधन में कुछ कहा है, आइए पहले उसे सुनते हैं।
बजट में बायोफार्मा शक्ति मिशन की घोषणा भी की गई है। इस मिशन का उद्देश्य है भारत को बायोलॉजिक्स और नेक्स्ट जनरेशन थेरेपीज के क्षेत्र में ग्लोबल हब बनाना। हम एडवांस बायोफार्मा रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग में लीडरशिप की ओर बढ़ना चाहते हैं। साथियों, आज दुनिया विश्वसनीय और रिजिलियंट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स की तलाश में है। भारत के पास यह अवसर है कि वह इस भूमिका को मजबूती से निभाएं। इसके लिए आप सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत आत्मविश्वास के साथ निवेश करना होगा।
तो जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी स्टेक होल्डर्स के बारे में बात की और बात किया कि कैसे ये मिशन हमारे बायोफार्मा क्षेत्र को लाभ देगा, तो इस पर चिनॉय जी आप क्या कहना चाहेंगे?
इसमें जो है तो पहले तो जो बजट में है 10,000 करोड़ का एक प्रोग्राम घोषित किया गया था और इसके अंतर द्वारा जो है ना प्राइवेट सेक्टर का जो कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट है और ज्वाइंट वेंचर्स जो ग्लोबल बायोलॉजिक्स प्लेयर्स है वो एक तरीके से भारत में एक रुचि रखेंगे और उससे क्या होगा कि जो हमारी जो टारगेटेड फंडिंग है उससे जो वैल्यू चेन जो पूरा वैल्यू चेन वो अपग्रेड होगा और डोमेस्टिक जो कंपनीज है वो स्केल बना सकते हैं। उनके फर्मेंटेशन में जो अगर आप फार्मा में देखें तो हम केमिकल्स में अच्छे थे लेकिन फर्मेंटेशन में हम थोड़े पीछे थे, तो फर्मेंटेशन सेल कल्चर प्लांट्स कोल्ड चेन ये वैल्यू चेन में एक इम्प्रूव करेंगे। और तीसरा जो है वो बजट में भी अनाउंस किया गया था जो क्लिनिकल रिसर्च चाहिए और R&D एक्सपेंशन चाहिए, वो निपमर्स को एक्सपैंड कर रहे हैं और 1,000 से ज्यादा क्लिनिकल टेस्टिंग सेंटर्स कर रहे हैं और इसमें जो है ये रेगुलेटरी जो फोकस है ये डोमेस्टिक क्लिनिकल डेवलपमेंट को जो भारत में जो डिजीजेस है उसके लिए फायदेमंद होगी और एक इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन जाएगा अर्ली फेज और ब्रिजिंग स्टडीज के लिए। और इसमें जो सबसे बड़ा जो है जो प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि ये एक फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड से हम अभी क्या बन रहे हैं, हम हायर मार्जिन बायोलॉजिक्स बायोसिमिलर्स और एडवांस थेरेपीज की ओर जा रहे हैं जिसमें भी एक्सपोर्ट का काफी पोटेंशियल है। तो लार्ज फार्मा कंपनीज के लिए बायोटेक स्टार्टअप्स और R&D हाउसेस के लिए और ये जो पूरे जो एनालिटिकल लैब्स है क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए ये काफी फायदेमंद हो सकता है और भारत को डिफरेंटली पोजीशन कर सकता है।
आपने बहुत विस्तार में हमारे श्रोताओं को इस बायोफार्मा शक्ति मिशन के बारे में बताया। तो आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में ये भी कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामूहिक भागीदारी बहुत जरूरी है। आप प्रधानमंत्री के इस आह्वान को किस तरीके से देखते हैं?
श्री जी अगर आप देखें तो ये जो पूरा जो प्रधानमंत्री का आज ये एक तरीके से एडवाइस था और एक डायरेक्शन था इंडस्ट्री के लिए और जो वेरियस स्टेक होल्डर्स से है वो ये था कि जो गवर्नमेंट कर सकता है गवर्नमेंट ने बजट में किया है अभी और इसको आगे ले जाने के लिए उद्योग का और अन्य जो स्टेक होल्डर्स है वो मिलजुल करके काम करेंगे। तो अगर हम मिलजुल कर काम करेंगे और एक दिशा में काम करेंगे तो उससे जो हमारा विकसित भारत का जो लक्ष्य है 2047 का उसको प्राप्ति करने में बड़ी एक तरीके से सफलता भी हो सकती है और इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है और बड़े सबको साथ मिल करके एक ही दिशा में चल करके ये एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश था प्रधानमंत्री का। जो भी स्टेक होल्डर हो चाहे लार्ज इंडस्ट्री हो मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्री पे उन्होंने खास जोर दिया था, उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो है ये जो डेफिनेशंस है और जो लिमिट्स है उनको बढ़ाया था कि स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री का ये डर निकल जाए कि अगर वो ग्रो करेंगे तो उनको फैसिलिटीज जो मिलती थी वो बंद हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला कलेक्टिव एक तरीके से एफर्ट होना चाहिए।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप चिनॉय जी हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।
धन्यवाद।
सुर्खियों में